मीठे बच्चे उन बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए। यहाँ हद की कोई बात नहीं है, उन बड़े उमंग के बाप को याद करो तो पुराने दुनिया भूल जाए। बच्चा मिलता है पुरानी दुनिया, बेहद के बाप से बेहद की नई दुनिया का बच्चा मिलता है। नई दुनिया का बच्चा क्या है? ठीक है, बच्चे का भी पुराना हो जाता है। बच्चे का बच्चा भी एकदम नया नहीं है, एकदम बेहद का नहीं है। प्राणी संगमियों को जो बन रहा है उसमें हमारी मनसा की तेज ऐसी बन जाए कि दुख का लेश मात्र अनुभव न हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई भी जाद ही क्यों न हो जाए, वज्रपात ही क्यों न हो जाए, लेकिन मन का भी ऊपर असर न पड़े। एकदम जीवन मुक्त स्टेज, जीवन में रहते भी हैं लेकिन दुख दर्दों के भी परे और सुख का भी अनुभव करते हैं। ऐसा बेहद का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए तुम बच्चे यहाँ आए हो। कहाँ जाकर नहीं लेना है, कहाँ लेना है, यहाँ आए हो, यहाँ ये वर्षा लेना है। विकास चला है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, ये है बड़े से बड़ा बाबा। साथ बैठे हुए हैं वो है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप। यहाँ यह शब्द किसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है? यह है सबका बेहद का बाप। किसने बोला, कब बोला और किसके लिए बोला? यह किसके लिए बोला? हाँ, उस समय ये वाणी चलाई गई थी ब्रह्मा भक्त से। उस समय यह जो लागू होता है वो इमर्ज करके बोला गया। जो यज्ञ का आदि का व्यक्तित्व था उसको बाबा ने इमर्ज किया और यह करके बोला जिसका टाइटल ब्रह्मा को मिला हुआ है। यह है सबका बेहद का पाप। सबका माना कितने का? जो भी मनुष्य मात्र है, जो भी ह्यूमैनिटी है, सबका बाप है। ऐसा बाप नहीं कि मिले ही नहीं। आपके लिए ही वाणी में बताया कि बाप है तो मिलना चाहिए ना। वो बाप ही कैसा जो बच्चों से मिले ही नहीं। तो सबका बेहद का बाप जिससे बेहद का सुख, बेहद की चापलती मिलती है, वो तो है हद की मिलती है। कोई के पास 1,000, कोई के पास 5,000, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबत और हद के बच्चे, यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की चाहते सीता वर्षा लेने के लिए। पास में आए हैं, ऐसे नहीं कि बाप आकर के परम धाम वापस चला जाएगा फिर हमें वो प्रॉपर्टी मिलेगी, या सती में अगले जन्म में वो प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं, यहाँ ही उसको सुख शांति का अनुभव करना है। देवी वरलाख में दिल में आज तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आशा नहीं रहती है। कहेंगे शांति मिले, वो तो सत्संग में मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं जिससे नई दुनिया का मालिक बन गए, एक देश दो देश या कुछ देशों का मालिक बनने के लिए नहीं, सारे विश्व सारी नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। और विश्व भी पुराना नहीं, नया विश्व, तो यहाँ क्यों आए हो? बच्चे कितनी बच्ची को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, अभी की तो कोई बात ही नहीं, बाबा आपके हम देवद का स्वर का वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर माया देवी क्यों लेती है? इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं, ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। जैसे तुमको कपड़े हैं वैसे इनको कपड़े पड़े हैं, यह तो बाबा है ना, तो पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं, ये तो फैमिली हो गई, क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, ये तो और कोई नहीं कह नहीं सकता कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। हम जाते हैं बाप दादा के पास, वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्राप्ति के सब हकदार हैं, तो बाबा के अविनाशी बच्चे तो होते ही हैं। आत्माएं तो आत्माएं तो तुम हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोते पोते अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो बहुत पक्का घोषणा चाहिए। हम आत्मा परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्मा बाप से आकर मिले हैं, आगे तो शरीर का भ्रम था, फलाने फलाने नाम वाले ही क्या पैटी लेते हैं, अभी तो है आत्मा परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप, बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है और एक ही बार ये मेला लगता है, भक्ति मार्ग में फिर अनेक आए थे जिससे मेले लगते रहते, जो अनेक बार के जिसमें मेले लगते हैं भक्ति मार्ग में उनमें भी बड़े से बड़ा मेला कौन सा माना जाता है? गंगा सागर का, हाँ कहते हैं भक्ति मार्ग में और मेला बार बार, गंगा सागर एक बार, तो एक ही बार भक्ति मार्ग में तो अनेक आर्टिफिशियल मेले हैं, यह एक ही बार लगता है, यह सबसे बंदरपुर मेला। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन रहे तुम आत्माएं अलग रहे, ये भी तुम समझते हो हम आत्मा अपने तीस काले सोम में रहने वाली है, अभी यहाँ पार्क बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर के शांति मांगते हैं। समझते वो घर बार छोड़ करके जंगल में जाते हैं तो उनसे शांति मिले, परंतु ऐसा कोई शांति कोई बाहर से मिलने की चीज थोड़ी है। शांति के लिए तो कहा जाता है शांति गले का हार है, जैसे हार को जब चाहे पहन लो, तो ऐसे ही आर्थिक स्थिति में स्थित तो हो जाओ या ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाए कि हम जब चाहे तब आर्थिक स्थिति का अनुभव कर सके। भयंकर के कारण भयंकर परिस्थितियां ही क्यों न हो, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के आधार पर आर्थिक स्थिति में निसंकल्प के स्टेज में टिकने के अभ्यास किए गए तो जरूर शांति अनुभव। अभी वो सन्यासी के शहर में आ गए, जब जंगल में जाने से शांति नहीं मिली, मन शांत नहीं हुआ, तो कहाँ घुस पड़े, शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी, क्योंकि अब उनमें इतनी प्योरिटी नहीं रही, तो प्योरिटी की पावर से जंगल में उनके पास भोजन पहुंच सके। वो गुरु बन करके बैठे तो हैं, नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं, बाहर की दुनिया के अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे हैं जो बाबा ने बोला शादी बर्बादी, और वो कहते हैं बाबा ने तो कहा बने स्वयं मर के पवित्र बनो, उल्टा ज्ञान देंगे। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो, कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी, कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना? अभी कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई भी चंचलता न चले जीत पानी है या लड़ाई लड़नी है जीत कब पाई जाती है, बिना लड़ाई की जीत पाई जाती है क्या? अरे लड़ाई तो चल ही रही है, चलते फिरते उठते बैठते अपनी दृष्टि व्यक्ति की चेकिंग करने से पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी, योग बल की ताकत तो है ना? इतने बड़ी मेहनत लगती है, आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं होगी। क्यों? आगे चलकर मना तब जब चारों योगों की सूचन का कार्यकाल समाप्त तो हो जाए, 63 जन्मों की जो भी लीले है वो आवृत्ति हो जाए, हिसाब किताब पूरे हो जाए, तब आगे चल करके कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। जैसे उन्हें तो कोई भी जल्दी बीमारी नहीं होती है, और यहाँ से कैंसर आदि देखो कैसी कैसी गंदी गंदी बीमारियां होती है। गंदी बीमारियां शरीर में क्यों लगती हैं? क्योंकि इतने अति के अधिकारी बनते हैं कि मन एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जो न करना चाहिए वो ही करने लग पड़ते। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश करके जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां नहीं होती, कोई भी गंदा काम नहीं होगा। नाम ही है सर्ग, स्वर्ग में तो सुखी ही होता है, तो एक दूसरे को सुखी ही देंगे ना, सुख का नाम लेता है। उनको भूल जाने के कारण लाख वर्ष कह देते हैं, उसको भूल जाने के कारण जो स्वर्ग के सुख भोगे हैं, जो स्वर्ग दी चुका है उसको भूल जाने के कारण लाख वर्ष कह दिए हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाख वर्ष हुए होते तो फिर बात ही याद नहीं, ये मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? मंदिर आदि मूर्तियां आदि बनाई ही इसलिए जाती है कि उनकी यादगार कायम बनी रहे, ताकि जब बाप आ गए तो उन प्राचीन मूर्तियों पास प्राचीन प्राचीन गुफाओं की चित्रकारियों आदि के आधार पर जो शास्त्र बने उन शास्त्रों का असली अर्थ समझा सके। शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं होती है, शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है, वही शांति का सागर सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियां बस नहीं हो सकती, माना कौन लोग, साधु सन्यासी कहते हैं कर्मेंद्रिया बस नहीं हो सकती, बाप कहते योग बन से तुम कर्मेंद्रियों को बस करो, बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। क्या कर्मेंद्रियों से क्या काम करने हैं, कायदे युक्त काम करो, जो संसार में कायदे का प्रचलन नहीं है उस कायदे के बरखिलाफ जोर जबरदस्ती करके कोई कार्य किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे लवली बात को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए, जो हमें हर कार्य में कायदा करना सिखाते, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, कर्मेंद्रियों से वही कार्य करना है जिससे टाइम वेस्ट न हो जाए, व्यस्त कार्य नहीं करना है। कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, अब लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं, जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए, आत्मा का जब परमात्मा बाप के साथ अति का प्यार अति का स्नेह होता है तो आत्मा जैसे सत्य को भुलाई देती है, परमात्मा बाप के संकल्पों में ही डूब जाती है, इसी बात को उन्होंने लीन होना कह दिया। बाबा एक ही बात बोलते हैं, ऐसे नित्य हमेशा के लिए लीन हो जाती है आत्मा, आत्मा के संकल्प परमात्मा बाप के संकल्पों में हमेशा के लिए तिरोहित हो जाते हैं, नहीं एक ही बार आत्मा परमात्मा में लीन स्थिति का अनुभव करती है, जो बाप का संकल्प तो बच्चों का संकल्प, बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ये धन माल हम क्या करेंगे, छोड़ो सर, जैसे पागल होते हैं सब कहने लगे इनको बैठे बैठाए क्या हो गया, धंधा आदि सब छोड़ करके आ गया, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार हो गया, राजाई मिल गई है, परंतु कैसे मिलेगी क्या होगा ये उस समय कुछ नहीं पता नहीं चला, बस मिलना है, उस खुशी ने सब कुछ छोड़ दिया, अगर अभी देखो धीरे धीरे नाली मिलती रहती है तो बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो है मापदंड तो है स्कूल में क्या है मापदंड मापदंड है ही विश्व की बात का ही प्राप्त करना तब तो विश्व के बात का नहीं बनेंगे बनेंगे तो नंबर वार पुरुषार्थ अंतर पुरुषार्थ भी नंबर वार करते देहद के बाप से राजा ही लेने के लिए तुम आए हो बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर के हमारे दुख हरो सुख दो बच्चियां कहती हैं हमको कुछ जैसा बच्चा भी मैं कहती हूँ कि माताएं कहती हैं हाँ फिर बाबा की तरफ से बोला गया बच्चियां कहती हैं हमको कुछ जैसा बच्चा मिले कृष्ण जैसा बच्चा मिले राम जैसा बच्चा मिले तो नहीं मिलेगा अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना कृष्ण जैसा बच्चा कहाँ मिलेगा बैकुंठ में मिलेगा ना कृष्ण बैकुंठ का है उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ऐसे झुलाते हो झूले में झुलाते हो वो बात है क्या शास्त्रों में जिस कृष्ण को झूले में झुलाने की बात कही गई है वो सचिव का कृष्ण है यह संगम जी स्वर्णकार का कृष्ण है तो वो बच्चा तो बैठक में मिलेगा बैठक पैराडाइज जनरत जिसका शास्त्रों में गायन है वो वर्तमान समय के संगम युग का गायन है सचिव का गायन नहीं अभी तुम बैकुंठ की बात का ही लेने आए वहाँ जरूर कृष्ण मिलेंगे पवित्र बच्चा मिले ये आप भी पूरी होती यू तो कृष्ण यहाँ भी बहुत है परंतु वो तो सब नरक बाकी बुद्धि कहाँ अटकी रहती है वो कृष्ण सब की बुद्धि लटकी रहती है नरक में गड्ढे में तुम चाहते हो स्वर्गवासी को तुम नरकवासियों को नहीं चाहते पढ़ाई तो बहुत सहज है बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है भक्के खाए हैं तुम कितना खुशी खुशी उस मुआदे पर जाते हो अमरनाथ पर जाते हैं समझते हैं चंद्र ने पार्वती को अमर कथा सुनाई अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो वहाँ बस्ती मार्ग पर पहाड़ों पर बैठ करके कथा सुनाने की बात नहीं है वहाँ तो यादगार बनाई हुई है कि उसी स्टेज में रह करके शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई बात अभी की है ये तो बाप बैठ तुमको कथा सुनाते हैं कौन सुनाने वाला है बाप है या शंकर है बाप कथा सुनाते शंकर नहीं सुनाने वाला है सुनने वाला है सुनाने वाला नहीं है तो सुनने वाला है वो सुनता भी नहीं क्यों एक पार्वती को कथा बैठ सुनाई या सब पार्वती को बैठ सुनाई सब पार्वती है पार्वती है मानो सब पार लगाने वाली है नंबर वार पुरुषार्थ है तुम आए हो बाप के पास जानते हो ये भाग्यशाली रथ है जिसके पास आए हो वो भाग्यशाली रथ है किसने में बोला गया इस समय दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ये वाहन चलाई गई उस समय ये बोला गया। क्या बोला? तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, है? तो दादा लेखराज का भाग्यशाली रथ साबित हुआ? नहीं हुआ तो बाबा ने झूठ बोला क्या? तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, यह किसके लिए बोला? यह भाग्यशाली रथ है। अरे दादा लेखराज के लिए ही बोला, तो बाबा ने ही बोला, लेकिन तुम जानते हो, मैं नहीं कहता हूँ। क्या बोला? तुम जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन कर लिया। उस समय तो चली ही रही थी, तो ठीक है, लेकिन उस समय की जिस समय वाणी चलाई गई है उस समय कोई ये विरह करे कि देखो बाबा ने दादा लेखराज को भाग्यशाली रख सका है और आप ऐसे ऐसे कहते हो, तो बाबा ने नहीं कहा, किसने कहा, किसके लिए कहा गया? बच्चों ने कहा, तुम जानते हो ये भाग्यशाली रहते हैं, तो तुम जानते हो, तुम आए हो, हम शिव बाबा के पास जाते, तुम इसलिए आए हो कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं उनकी कीमत पर। ऐसा ब्रह्मा के तन में है, फिर भी क्या बोलता है? तुम शिव बाबा, हाँ हम शिव बाबा के पास जाते हैं उनकी कीमत पर, चलेंगे चलेंगे रखे, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते हैं, ये तो तुम पूछताछ करो कि तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया, अपने मुंह को खोलने का पूछताछ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? बहुत कहते हैं कि हम समझ तो लेते हैं ज्ञान को, लेकिन दूसरों को सुना ही नहीं सकते, ये भी तुम्हारे पूर्वजों का हिसाब किताब। बाप तुम बच्चों को कैसे बनने का पहले रास्ता बताते हैं, एक तो कर्मेंद्रियों को बस में करो, दूसरा दैवी गुणगान करो, कोई गुस्सा आदि करो करे, अगर कोई गुस्सा आदि करे तो उसे सुनो ही नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ये तो बाचा की बात हो गई, तुमने तो उसी पल की बाचा सुना सुनाई, हमने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, तो चलो वो गुस्से को तो सहन करने की बात हो गई, रास्ता निकल आया, लेकिन किसी ने हाथ पांव चला दिया तब क्या करें? हैं? वो तो एक काम से सुनकर के दूसरे काम से निकालने की चीज नहीं है, तो उसके लिए बताया मौका निकाल करके भाग जाना चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। एक तो कर्मेंद्रियों को बसने करो, भाग जाना चाहिए, कौन भाग जाए, आत्मा भाग जाए कि शरीर भाग जाए? जब आत्मा आत्मिक स्थिति में रहकर के कोई कार्य करती है तो उसको थकानी भी नहीं होती, शरीर को लगाव नहीं होता है, तो उस समय जिस समय कोई देहभान दिखाई रहा है कर्मेंद्रियों से, जैसे माताओं के लिए बोला, बांधेली माताएं हैं उनको पति नहीं छोड़ते हैं, तो क्या बोला? तुम बाप की याद में उड़ जाओ, तुम्हारा मन जो है वो विकारों का सुख भोगने में नहीं लगता है, तुम बाप की याद में उड़ गई, अपने को डेड बना दिया, तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो एक तो कर्म इंद्रियों को वश में करो, दूसरा कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, गुस्सा आदि करे गुस्सा वाचा से भी किया जाता है, गुस्सा कर्मणा से भी किया जाता है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, जो ही नील बात पसंद न आए उसे मत सुनो, सुनते हुए न सुनो। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, क्योंकि कामे सुक्रोधित तो होते ही, तो उन पर फूल बरसाओ, उनकी महिमा करो। क्यों? बाप की याद में उड़ गई, अपने को डेड बना दिया, तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो एक तो कर्म इंद्रियों को वश में करो, दूसरा कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, गुस्सा आदि करे गुस्सा वाचा से भी किया जाता है, गुस्सा कर्मणा से भी किया जाता है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, जो ही मिल बात पसंद न आए उसे मत सुनो, सुनते हुए न सुनो। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, क्योंकि कामे सुक्रोधित तो होते ही, तो उन पर फूल बरसाओ, उनकी महिमा करो। क्यों? ऐसे नहीं उनके सामने कहने लगो तो पुरुष तो सब होते ही है दुर्योधन। क्यों महिमा करो? क्योंकि एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष तो सब ही बनते हैं, जो अभी स्त्री चोले हैं वो अगले जन्म में पुरुष चोला बनते हैं या पुरुष चोला थे, तो हिसाब किताब कौन से पूरे हो रहे हैं? जो भी पूर्व जन्म के हिसाब किताब हैं हमारे ही तो पूरे हो रहे हैं, हल्का कौन हो रहा है? जो आतताई बन रहा है वो हल्का हो रहा है, या जो सहन कर रहा है वो हल्का हो रहा है? जो सहन कर रहा है वो हल्का हो रहा है। तो जब देखो पति पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो, गुस्तियाँ तो बहुत है, काम है तो क्रोध है तो होते हैं, अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी तो नहीं है। क्या कहा? कलयुग के अंत में आकर के सभी स्त्रियां अबलाएं हो जाती हैं, तो एक द्रौपदी की बात नहीं है। अभी बाप आए हैं नगन होने से बचाने के लिए, बाप कहते हैं समृद्धि लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने के लिए आया हुआ हूँ, वहाँ पतित आत्मा तो जा नहीं सकती। क्या कहा? जब तक पति सपने की आस रहती है तब तक कोई भी इस देह में रहते शांति का अनुभव नहीं कर सकता, कर्म इंद्रियों की कोई भी आसना रहती है तो शांति की स्टेज का शांति धाम का स्टेज का अनुभव और निसंकल्प की स्टेज का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ, जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा करके अब सबको वापस आना, सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी घर के पते कोई कोई व्यक्ति कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़ बिहार में एक एक पत्ते की हिस्ट्री थोड़ी बैठ बता सकते, हिस्ट्री बताते एक बीज और एक बीज बाप की एक रचना, पहली रचना, पहली रचना रचयिता और रचना का झार और बीज इनका संबंध बताते, इनका आदिमति अंत बताते हैं। बाकी मनुष्य तो ढेर है, हफ्ते ढेर है, एक एक के अंदर तो थोड़े ही देख जाने की। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। बाप को एक एक के अंदर को जानने की कोई दरकार नहीं है, इसलिए मुरली जी कहते हैं कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। बाप कहते हैं तुम बहुत, तुम हमको बुलाते हो कि आकर के हमको पति से पावन करो, ये बुलाते हो, त्रेसठ जन्म बुलाते आए, बुलाते हो किसलिए बुलाते हो, हमको पतित्व से पावन बनाओ तो क्या करें, क्यों अंतर काली कर दें, नहीं ज्ञान सुना के चले जाएं, ज्ञान सुना के चले जाने से भी नहीं बनेगा, क्यों अंतर काली करने की कोई बात नहीं है, आकर के पतित्व को पावन बनाना पड़ेगा। जो बाप के पास जो पावर है, बाप को अपनी कर्मेंद्रियां नहीं है, तो बाप को कर्मेंद्रियों का आधार आकर के लेना पड़ता है। कर्मेंद्रियों से इंसान का रंग लगता है, सबसे ज्यादा संग का रंग कौन सी इंद्रिय से लगता है, आंख से लगता है, तो दृष्टि से शक्ति बन जाती है, वृत्ति सुधरती है तो वृत्ति भी सुधर जाती है, वाइब्रेशन सुधर जाती है। अभी तो दुनिया में कम्युनिकेशन के साधन इतने से निकल रहे हैं, लोग समझते हैं ये तो बहुत भारी उपलब्धि है, लेकिन वो भी अधूरी रह जाएगी। दुनिया का परिवर्तन वाइब्रेशन से होगा, वृत्ति से होगा, दृष्टि से होगा। तुम बुलाते हो कि आकर के हमको पति से पावन बनाओ, कर्मेंद्रियां तो है, लेकिन उन कर्मेंद्रियों में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और भ्रष्ट से भ्रष्ट इंद्रियां भी है। तो आखिरी में उद्धार किससे होगा, क्या बोला है मुरली ने, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ये तो नहीं कहा कि भ्रष्ट इंद्रियों पर बिठा कर ले जाऊंगा, वो तो आखिरी शक्ति है। जब द्वापर और कलयुग होता है तब वो आखिरी जो प्रवृत्तियां हैं वो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना सीखती है और सिखाती है, वो तो कभी स्वर्ग में आते ही नहीं है, ये तो विधर्मियों की शक्ति है। बाप तो आकर के श्रेष्ठ जो ज्ञान इंद्रिय है उन्हें ज्ञान इंद्रियों से सुख लेना सिखाते, तो तुम कहते हो आकर के हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कैसा योग सीख रहे हो, जिसमें संग के रंग का राग भरा हुआ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कोई की याद कब आती है, रसगुल्ला कब याद आता है, पहले कभी खाया होगा तभी तो याद आएगा, तो मुझे याद करो, तो कैसे याद करें, किसी ने देखा ही नहीं है, किसी ने जाना ही नहीं है, तो कैसे याद करेगा। तो जितना जितना जो क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं उतना उतना उसको याद सतह ही थक जाती है। बाप यह मत देते हैं कि मुझे याद करो। और वो भी क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो ये नहीं कहते, क्या कहते हैं, याद करो इतने से शर्त पूरी नहीं होती, क्या कहते हैं, नाम एक अब याद करो, मुझे भी याद करते रहे और दूसरों का भी संग तरंग ले लिया, दूसरे भी याद आ रहे हैं, तो एक तरफ धन होगा और दूसरी तरफ ऋण हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, बल्कि दूसरों दूसरों को जाति याद करते रहेंगे तो सारे विचार हो जाएगी, विचार की दुनिया नीचे गिरती है और अब विचारी दुनिया जब तक रहती है तो नीचे गिरना तो होता है लेकिन बहुत धीमी गति से गिरना होता है। तो मां ने कभी याद करो, बाप की श्रीमत और गत, बाप की गत मत सबसे न्यारी है, सबसे मन दुनिया में और कोई ऐसी मत नहीं दे सकता कि मां एक अब याद करो, मत यानी राय जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बात हमारी सदगति करने वाला है, कौन जो सबसे न्यारी मत देता है, कैसी न्यारी मत, जिस मत से हमें पता चलता है कि ये मत सिवाय बाप के और किसी की हो नहीं सकती, ये कौन कोई भी प्रश्न सुनाए तुम्हारी हमको ये राय ऐसी श्रेष्ठ मत नहीं दे सकता, तो एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा कोई नहीं, ये उसका नाम क्या दे दिया, उसका टाइटल क्या दे दिया, एक ही सदगति पाता है तो सदगुरु कितने हुए, एक ही सदगुरु, दूसरा न कोई, इस समय ही बुलाते हैं, सतगुरु में तो बुलाते ही नहीं है, अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति आता है एक राम, सदगुरु तो है सदगति तो देता है लेकिन सदगति देने के साथ साथ सर्व का सदगति दाता राम को कहा जाता है, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते, सर्व का सदगति दाता है एक कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता, राम का ही नाम क्यों लेते हैं, राम के नाम के साथ विशेष गुण कौन सा लगाया हुआ है, पति तो पावन भी बनने का कारण क्या है और बनाने का कारण क्या है, जो राम के साथ ही वो नाम लगाया जाता है, मर्यादा को सोचा माने विचार का नाम निशान बुद्धि में समाया हुआ नहीं है, पूरा ही एक लव्य है, कैसा है लव उसका, एक बाप में टिक करके रहने वाला है, जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह करके आंखों से लगा, ऐसे तो हर माके में बोलते राम 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 राम, लेकिन नमन किसको करते, जब फूल आता है तो उसको नमन करके माथे से लगाते हैं, जपना है एक फूल को, बाकी तो सब देहधारी आत्माएं हैं, बाकी सब है उनकी पवित्र रचना, वो है रचयिता कौन, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल कभी रचयिता नहीं होता, सुप्रीम सोल रचना भी नहीं है तो रचयिता भी नहीं, क्यों, क्यों क्रिएटर नहीं है, हाँ क्योंकि उनको तो शरीर है ही नहीं, आत्मा तो अविनाशी है, अनादि है, आत्माओं का बाप भी अनादि अविनाशी है, उसमें रचने की बात पैदा नहीं होती। रचने की बात कितने पैदा होती है? यूनिटी के लिए रचने की बात पैदा होती है जब शरीर होता है। तो एक है फूल, बाकी सब है उनकी पवित्र रचना। सुप्रीम कोर्ट तो न फूल बनता है और न कांटा बनता है। कि बनता है जो कांटा बनेगा तो फूल भी बनेगा, जो फूल बनेगा तो कांटा भी बनेगा। माला कुंकुम श्री से जान लेगा, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। क्या कहा? माला किनकी बनती है? जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन सर्विसेबल बच्चों के नाम की माला बाप स्मरण करते हैं, बार बार उन बच्चों को याद करते हैं। दुनिया किसको याद करती है? बाप को याद करती है। भगवान बाप को याद करती है और भगवान बाप संतन में आकर किसको याद करते हैं? अपने माला को याद करते हैं। माला मन जो मददगार सहयोगी बच्चे बनते हैं, सर्विसेबल बच्चे बनते हैं, उन बच्चों को याद करते हैं। ऐसे बच्चों को, कैसी सर्विस करने वाले बच्चों को, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं, फ्रंट में रहकर सर्विस नहीं, ऐसी सर्विस करते हैं, बाप के साथ साथ सर्विस करते हैं, उनकी ये माला है। तो बाबा को रचयिता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचा। यहाँ वास्तव में लिखना चाहिए जो बाप को रचयिता, क्या लिखना चाहिए? जो बाप को रचयिता नहीं कहेंगे, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, आत्मा है अनादि अविनाशी, तो अनादि अविनाशी जो आत्मा है उनके रचने का सवाल पैदा ही नहीं होता। रचयिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचा। तो सुप्रीम कोर्ट को रचयिता आत्माओं का इस आधार पर कह सकते हैं कि वो आत्माओं को आकर के आत्मस्वरूप की याद दिला। बाकी ऐसे नहीं कि आत्माएं आत्माएं रहती नहीं है, आत्मा तो सदैव है ही है, बाकी वो रची नहीं जाती। प्रजापिता ब्रह्मा आदि संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं, तो वो हुआ रचयिता। कौन? देखो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। पंचानन कहते हैं तो कितने ब्रह्मा हो गए? पांच ब्रह्मा हो गए। तो सिर्फ ब्रह्मा ने ही बोला, क्या बोला? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रखते हैं, माना उन पांचों ब्रह्मा में रचयिता कौन हुआ और बाकी ब्रह्म सब रचना हो गई। तो बाप की रचना तो अनादि रही, सिर्फ पति के पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुराने से, क्या कहा? आने का मकसद क्या बताया? लिए आते सिर्फ पति को पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं और उनका मकसद पूरा हो गया, एमआरजेक्ट पूरी हुई। तो ज्ञान सुनाना एमआरजेक्ट नहीं है। एमआरजेक्ट क्या है? पतितों को पावन बनाना। अभी तो है पुरानी शक्ति, नई में रहते हैं देवताएं। अब सूर्यों को देवता कौन बनाए? दूसरों को देवता कौन बनाए? सीधे देवता बनेंगे क्या? सूत्र ब्रह्मा के द्वारा पहले क्या बने? ब्राह्मण बने। फिर ब्राह्मणों को बैठ करके शिक्षा देते हैं एडवांस नॉलेज की, तब ब्राह्मण बैठे शिक्षा लेकर के ब्राह्मण को देवता बनते हैं। से बोला, अब सूत्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम खुद ब्राह्मण को देवता बन रहे हो। जानते हो बाबा, हमको सूर्य से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हो, तो अभी हमारी डबल मशीनरी हो गई। सिंगल मशीनरी नहीं है, कैसी है? डबल मशीनरी। जो ब्राह्मण बन चुके हैं ब्रह्मा द्वारा, उनको तो बैठ करके क्या बनाते हैं? ब्राह्मण को देवता शिक्षा दे करके। और जो ब्राह्मण भी नहीं बने हैं, उनको फिर क्या करना पड़े? उनको डबल कोर्स देना पड़े। पहले ब्राह्मण बने बेसिक नॉलेज लेकर, पहले आत्मा का ज्ञान, आत्मा बिंदु है, बेसिक नॉलेज ले, और बाद में एडवांस नॉलेज। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, मनुष्य से चैतन्य वाला हो गया ब्रह्म। जो मनुष्य शक्ति का हेड है वो है प्रगति का ब्रह्म। बाकी आत्माओं का विनाशी बात तो सिर्फ ही है। ये सब नई बातें तुम सकते हो। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति धारण करके आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी बुद्धि भी वृद्धि होती जाएगी, तुम्हारी संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। असल में देवता थे, फिर 84 जन्म हम कैसे लेते हैं? कैसे देवता से शुद्ध बनते हैं? सब राज सुन जाते हैं। जात की बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात, बाप कहते हैं एक तो मुझे याद करो और दूसरा वो, एक तो मुझे याद करो माने माने का वो भी बात, और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात बताई पवित्र बनो, वही नारायण की बात। नारायण पवित्र का मैंने 16 कला संतो, एक तो मुझे याद करो, दूसरा फिर पवित्र बनो। पवित्र बनो, योगी बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज क्या करके याद करती है, नॉलेज तो बड़ी सहज है, याद क्यों नहीं ठहरती है? क्योंकि 63 जन्मों के जो हिसाब किताब है वो जल्दी से सामने आ जाते हैं माया के रूप में, मायावी स्त्री पुरुषों के रूप में, और हमारी बुद्धि को भटकाएंगे। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज करेंगी। चौथा दिन, इस दुनिया में पुराने से पुराना ये देवताओं का चित्र है। इस दुनिया में पुराने से पुरानी चीज क्या है? डायनासोर पुराना नहीं है, उनके साथ कैलकुलेशन में कोई गलती है भारी। ये देवताओं के चित्र है पुराने से पुराने। वाहनों के महल आदि जो है, तुम कहेंगे पुराने से पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अब ये थोड़े ही किसको पता है ये लक्ष्मीनारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए? इन्होंने राजाई कैसे ली? सतयुग में तो नारायण का राज्य था, शास्त्रों में लिखा हुआ, लेकिन जिस नारायण का सतयुग में राज्य था वो सतयुग के आदि में उसने विश्व की बादशाह ही कैसे ली? जिस नारायण की कोई भी ग्लानी नहीं करते, सब देवताओं की ग्लानी करेंगे, नारायण की कोई ग्लानी नहीं कर सकते, तो जरूर वो संपूर्ण रूप हुआ है प्राप्ति का। अभी ये कोई को पता नहीं ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाएं कैसे ली, बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं। ढेर के ढेर शहरों शहरों में बिरला मंदिर बनाए हुए, बिरला मंदिर में किसका चित्र रखा हुआ है, लक्ष्मीनारायण का चित्र रखा हुआ है। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते हैं देवताओं की कृपा है। एक सभी की पूजा है ब्रह्मचारी भक्ति, ज्ञान एक ही बाप देते हैं बाकी सब है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही बाप है बाकी है सब भक्ति मार्ग की कथा है। ज्ञान से आधा तंत्र सदगति होती है, ऐसे भी कहा जाता है कि भक्ति से गति सदगति होती है। गति सदगति काहे से होती है, ज्ञान से भक्ति होती है, वो ज्ञान से सदगति होती है। गति मिलती है तो ज्ञान से मिलती है, सदगति मिलती है तो ज्ञान से मिलती है। भक्ति से तो खतर होता है, 2000 वर्ष का इतिहास हमारे पास है कि भक्ति करते करते हम नीचे उतरते गए। ज्ञान से एक बार सदगति हो जाती है फिर भक्ति की दरकार नहीं होती। तो ज्ञान पहले है, ज्ञान फिर भक्ति से वैराग आ जाता है। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा उतना उतना धन कहलाना, बिंदी लगाना, टीका लगाना, ये सब पूछता जाएगा। तो पहले ज्ञान आता है बुद्धि में, फिर भक्ति के क्रिया कर्म का के सब छूट जाते हैं, उनसे बैराग दिया जाता है। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से बैराग, पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसमें आसक्ति क्यों रखे। अब तो नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर, वो खुशी हमको रहती है। सही समझते हैं मुक्त पाना तो अच्छा है, फिर हम कभी शक्ति पर आएंगे ही, हम नहीं आएंगे। अब भगवान के लिए क्या कहते हैं, भगवान के लिए कहते हैं संत संत लग प्रभु होता है। हर संत में भगवान को संत में ही नहीं, क्या बोलते हैं, युग युग संभवामि, हर युग में आकर कहते हैं आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। अरे एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है, दूसरे तरफ कहते हैं कि आत्मा बुदबुदा है। अगर बुदबुदा सागर में मिल गया तो वो बुदबुदा या वो चुल्लू पानी फिर सागर से बाहर आ सकता है, आ सकता है या नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया ना।